पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमाम चरणानि आप ऊपर में बैठ सकते हैं आराम के साथ में। सोमनाथ जी एक विशेष दिन है, अभी राम नवमी गई, आज सीता नवमी है। जरा वो लेते आना, आज सीता नवमी है, आज सीता जी का जन्म हुआ। रामचंद्र जी के बाद में जो फिर नवमी आएगी वो चैत्र के महीने में हुई थी, ये बैसाख महीने में, ये शुक्ल पक्ष को ये हुई, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो ये नवमी है। ये सीता जी की आविर्भाव तिथि, और कृष्ण जी का जब आविर्भाव है ना तो उनके 15 दिन बाद में राधाष्टमी होती है, अर्थात कृष्ण से राधा जी 15 दिन छोटी हैं, और ये सीता जी रामचंद्र जी से एक महीना अंतर हुआ। अभी रामनवमी एक महीने या डेढ़ महीना अप्रैल में एक महीना रामचंद्र जी से ये छोटी हैं, एक महीना। और आज मैंने लोधी रोड पर इसके संबंध में अपना सब खत्म कुछ बतलाया था। सीता जी का आविर्भाव कैसे हुआ फिर से संक्षेप में बतला दूं, शायद पहले बतलाया है कि नहीं मुझे याद नहीं, बतलाया पहले जनकपुर में दो एक वर्षों से अनावृष्टि हुई तो बरसाती नहीं हुई, चारों तरफ में तहलका मच गया, पानी नहीं, तालाब सरोवर नदियां सभी सूखने लग गए, हाहाकार मचने लग गया। राजा जनक ने एक मीटिंग की, उसमें साधु संत ब्रह्मर्षि इत्यादि को बतलाया जो सर्वज्ञ भी हैं और जिनकी प्रार्थना भगवान सुन भी सकते हैं, उनसे उन्होंने प्रार्थना की। राजा के पाप से अनावृष्टि इत्यादि होते हैं, शायद मेरा कोई पाप हो गया, आप लोग का एक प्रायश्चित बतलाइए और कैसे वृष्टि हो, प्रजाओं का हित हो बतलाइए। उन्होंने कहा आप हल चलाइए, अभी हल तो चलाया नहीं, और आपकी रानी हल को खींचे,
हेलमेट जहाँ पर बेल लगते हैं वहां पर आपकी पत्नियां लगे और हम लोग वेद उच्चारण करेंगे, वेद मंत्र, उसमें प्रार्थना करेंगे इंद्र इत्यादि से जो वृष्टि हो। और महिलाएं गीत गाएंगी, सब महिलाओं को बुला लिया जाए, वहां पर जितनी महिलाएं थी सब आई, ब्रह्मर्षि लोग भी, ऋषि महर्षि सब लोग उनके साथ में चले और एक स्थान को पवित्र देख करके और उसमें सोने का हल बनाया गया, उसमें सोने का फाल लगाया गया, फाल माने जिससे वो जुटते हैं, लोहे लकड़ी के काहल होता है, लोहे का उसमें फाल होता है, उसमें सभी सोने के बने और उनकी पत्नी और महिलाओं के साथ में उसको खींच रही हैं और ये मुट्ठी पकड़े हुए हैं पीछे से और देवता ऋषि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। करते करते थोड़ा सा भी हल चला ही था, इतने में हल रुक गया, किसी चीज में वो अड़ गया। जब अड़ गया तो माने जैसे ये तो चल नहीं, स्त्रियां महिलाएं खींच नहीं सकी, जब अड़ गया तो उसमें ऋषि ऋषि सभी लोग आ गए और सबने मिलकर के उसको जोर से खींचा, उसमें उस फाल से जो नीचे का खेत जोतता है उसे एक घड़ा निकला। अब घड़े घड़ा वो थोड़ा सा टूट गया, उसे सुंदर एक कन्या निकली, बड़ी खूबसूरत जैसे कमल के फूल खिल रही हो। और राजा जनक ने बड़े प्रेम से उसको अपनी गोदी में ले लिया और सुनैना की गोदी में दे दिया, जी हम लोगों को तो पुत्र है कन्या नहीं, ऐसे ये हमारी पुत्री हुई, पुत्र से भी अधिक प्यारा उनको दे दी। कब से सीता जी का ये जन्म हुआ, सीता कहते हैं उसको जो कि आगे हल के वो नोकीला सा रहता जिससे कि वो जमीन खुदी जाती है, उसको सीता कहते हैं, इसलिए सीता के नाम पर इनका नाम पड़ गया सीता। सीता जी बड़ी होने लगी धीरे 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 धीरे, जब वो किसेरी हुई 12 वर्ष की, महाराज जनक के पास में एक धनुष था शिव जी का दिया हुआ, तो वो वहीं पर रखा था। एक बार कहीं महाराज बस ये जा रहे थे जनक जी कहीं बाहर, अरे बेटी आज तो मैं बाहर जा रहा हूं, तुम इनकी पूजा कर देना। महाराज जनक जी कैसे पूजा करते थे, अपने हाथों से ही गोबर से चारों तरफ की जमीन को लीप देते और उसको फूल इत्यादि से उनकी पूजा, चंदन गंध इत्यादि देते और उसको धूप दीप इत्यादि देते, धनुष को उठाते नहीं थे, उठता भी नहीं था, बहुत विशाल था। सीता जी ने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए वो गई और गोबर इत्यादि लेकर के वहां गई और सहज रूप में उस धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया जैसे एक कमल के फूल को उठाते हैं और उसको नीचे ऊपर चारों तरफ से जमीन को लीप करके और वहां पर रख दिया और फिर चंदन पुष्प इत्यादि से धूप दीप आरती से उसकी पूजा की। चारों तरफ हल्ला हो गया, जिसको बड़े बड़े महारथी लोग नहीं उठा पाते और ये छोटी सी बालिका ने इसको उठा लिया, वो भी एक हाथ से। महाराज जनक जब लौट करके आए तो सुने तो बड़े प्रसन्न हुए, वही तो लड़की तो कोई अद्भुत है, ये साधारण लड़की नहीं है, तब तो गर्भ से पैदा नहीं हुई, ये मालूम होती है कोई देवी है या कुछ बात है, लक्ष्मी जी की अवतार है, इतनी सुंदरी भी तो कोई लड़की नहीं होती और इतनी छोटी उम्र में इसके कितने सुंदर सुंदर ये गुण हैं। उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा की थोड़ी सी जब बड़ी हो जाएगी और विवाह योग्य तो मैं इसका विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस धनुष को उठा ले और इसका पतंचा ऊपर से नीचे उस पर लगा दे और उसमें बाण चलाने लायक कर दे। उसके बाद वो बात तो खत्म हो गई। अब धीरे धीरे द्रव्य 15-16 वर्ष की जब हुई, 16 वर्ष की, तो धनुष रख दिया गया, कहा जैसे इसी से ही शादी होगी, जो कि इसको उठा करके इसकी पतंचा चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देगा। बड़े बड़े राजकुमार आए भारतवर्ष के, किसी की बात बस की बात नहीं। बाणासुर आया, उसकी 1000 भुजाएं, वो आया, उसकी भी थी कृष्ण से युद्ध हुआ था। ये लोग साथ आकर के उठाया, वो भी नहीं उठा। रावण आया, उन्होंने उसको मना किया, ये तुम मत उठाओ, तुमसे उठेगा नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी। वो माना नहीं, धनुष को उठाने लगा तो थोड़ा सा वो हिल तो गया, किंतु उसके ऊपर में ऐसा गिरा जो उसको उठा नहीं सका, बिलबिलाने लगा। बड़ी मशीन से सब बहुत से लोग आकर के थोड़ा सा टसमस किया तो वो उसकी प्राण बचा, वो भी भाग गया। देवता लोग आए, देवता लोग भी नहीं उठाए। अंत में राम लक्ष्मण जी भक्त के साथ में जब आए तो उसको उठाया, उठाने के बाद में उनके साथ में शादी हुई। उठाते समय में उठा करके पतंचा जब डोरी चढ़ाने लगे तो ऐसा किया या ऐसे नवाया, उस समय में उधर टूट गया, पुराना था, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप टूट गया। इसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं, सीता जी ने उनके गले में माला भी विवाह, वो घड़ा में वो कैसे पैदा हुई, उसके लिए बतला रहे हैं। रावण बड़ा प्रतापी राजा था, रामचंद्र जी से 1000 वर्ष पहले उसका जन्म था। उनके जन उनके कुल में मानधाता थे, उनके बहुत पूर्व पुरुष थे, तो उसमें भी रावण था, ने बहुत वर्षों की इसकी आयु थी। तो ये रावण सब पृथ्वी पर जबकि सबको जीत लिया है, कहीं कहीं पर पराजित भी हुआ, किंतु गुंडा टाइप का था, हारने पर भी वो हारता नहीं था, गुंडा टाइप का। आजकल गुंडे होते हैं ना, छल बल कल से जैसे कि किसी को परास्त करते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो वो सब जगह टैक्स लेता था। दंडकारण्य में बहुत से साधु संत थे, महर्षि थे, जो कि भगवान का भजन करते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे, भजन करते थे। उन्होंने चारों तरफ से टैक्स मंगाया, यहाँ पर भी अपने सैनिकों को भेजा, पदाधिकारियों को भेजा, वहां से भी ऋषियों से भी टैक्स लो। ऋषि बोले, भाई हम लोग टैक्स क्या देंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, फल मूल खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमारे राज्य में भजन पर भी टैक्स है। जैसे आजकल टैक्स है ना सभी पर, जो भगवत भजन करे न करे, चोर साधु बदमाश जितने हैं, अच्छे भी हैं सज्जन भी हैं, सब एक कैटेगरी में, उनके लिए साधु संतों का कोई विशेष सम्मान। उन्होंने कहा जैसे आप लोगों को भी टैक्स, जो ध्यान लगाते हैं हमारे राज्य में तो इस पर भी टैक्स, जैसे हिंदुओं पर जजिया टैक्स किसने लगाया, अकबर ने लगाया था जजिया टैक्स, इसके बाद में फिर इसी तरह से हटाया था। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, विधर्मी लोग, धर्म पर भी अंकुश लगाते हैं। इस देश में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म कोई इस पर ये नहीं ये कोई धर्म करे, नहीं तो करो मत करो नहीं करो, उस पर बैन है। तो इस तरह से उस पर लगाता था, बैन लगा रहा था, जो धर्म कर्म मत कोई करो, इसलिए टैक्स मांगा। ये ठीक है, हम लोग तो कुछ टैक्स देने लायक नहीं है, तो हम यही टैक्स देते हैं, अपने अपने जंघों को चीर करके उसमें से जो रक्त निकला सब लोगों ने मिल करके उसको भर दिया, ले जाऊं। जब ले जाने लगे तो कहा जाकर के कह देना, ये रक्त भरा जो घड़ा है इसी से तुम्हारे कुल का सबका ध्वंस हो जाएगा, सब मरोगे, विनाश होगा। तो बड़े डर गए। इसके बाद में लेकर के गए वहां, रावण कहीं बाहर गया था या बात नहीं होने पर भी मंदोदरी उनकी पत्नी थी, मंदोदरी के हाथों में दिया डर करके, रावण को नहीं दिया। और बोले जैसे ये रक्त देते समय में उन लोगों ने कहा कि इसी घड़े से ही, रक्त भरे घड़े से ही उसका विनाश होगा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, इसको ऐसी जगह में भेजना चाहिए जो कभी इसको कोई निकाल ना सके, ले जाकर के हिमालय के प्रांत में और उसको लेकर के गाड़ दो। तो लंका कहा भारतवर्ष के दक्षिण में ना, वहां से लेकर के एकदम हिमालय की तराई में उत्तर दिशा में लेकर के जमीन के नीचे उसको गड़वा दिया। किंतु मंदोदरी तो खुद आई नहीं, रावण तो आया नहीं, उनके नौकर जाकर आए, तो उनको गाड़ना चाहिए था 10-20 हाथ नीचे, तो उन्होंने गाड़ दिया कहां, थोड़ा सा एक इतना बित्ता नीचे गाड़ा बस। इसलिए उसके सीता में फल में लग गया और उससे निकल गया, उससे सीता जी निकली, यही रावण के ध्वंस का कारण बनी। रावण उनको हरण करके ले गया और इसी से उनका विनाश हुआ। सीता जी की बहुत सी विशेषताएं हैं। अभी अपने पिता के घर से आई, घर से कभी पैर नहीं रखा, सूर्य ने उनका कभी मुख नहीं देखा, असुर जम पश्यानारी, कभी पैर पृथ्वी पर नहीं चले हैं, इतनी सुकोमल हैं। आज रामचंद्र जी के साथ में जाने के लिए तैयार हुई, राम ने बहुत तेरा समझाया, कौशल्या जी ने समझाया, महाराज दशरथ ने खुद समझाया, किसी की बात नहीं मानी। मैं रामचंद्र जी के साथ में वन में अपने पति के साथ में मैं सुखपूर्वक रहूंगी, जितनी भी कठिनाई होगी, अरे वहां पर बहुत से सर्प हैं काट देंगे, विरह सबसे बढ़कर के वो नहीं है, देख लेंगे हम, पानी कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। राक्षस चारों तरफ में घूमते हैं, न जाने क्या कर देंगे, खा जाएंगे कोई बात नहीं, और तुम्हारा अपहरण हो जाएगा कोई बात नहीं। सब कठिनाइयों को सुन करके भी वो तैयार हो गई। पति की सेवा हो तो ऐसे, और पति भी हो तो राम के समान, दोनों ऐसे हो, गुरु हो तो गुरु और शिष्य भी हो तो ऐसा ही शिष्य हो, योग्य होना चाहिए। रामचंद्र जी बाध्य हुए ले जाने के लिए, वन में गए तो बहुत तरह के कष्ट आए, बहुत तरह के। सबसे पहला कष्ट तो ये आया, विराट नाम का एक राक्षस रास्ता रोक करके खड़ा हो गया और सीता को ऐसे पकड़ करके लेकर के चल पड़ा। ये लोग विवश से कुछ कर न सके, अंत में राम लक्ष्मण जी ने बाणों की वर्षा उस पर की, उससे कुछ नहीं हुआ, सब बाणों को खा जाता। तो सीता जी को रख करके दोनों को दोनों हाथों से पकड़ करके एकदम अपने कंधे पर बैठा करके चल पड़ा। अब सीता जी बिलबिलाने लगी, अब क्या होगा। इसके बाद राम और चंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने कुठार से उसके ये दोनों को काट करके गिरा करके मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसको पबंद। इसी तरह से कितने असुरों को राक्षसों को मारा, अंत में रावण किस प्रकार से उनको अपहरण करके ले गया ये भी जानते हैं। सीता जी से और लक्ष्मण जी से कुछ वार्तालाप हुआ, जिसमें सीता जी ने उनको बहुत से लांछन लगाए और गाली गलौज की। तुम राम के पास में नहीं जाना चाहता है, तुमको उन्होंने बुलाया, राम हा लक्ष्मण कहा, तुम गए नहीं, तुम चाहते जी हमको तुम ग्रहण करेगा, हम तुम्हारे साथ में घर नहीं करेंगी, तू भरत का भेदिया है, जासूस है, और भरत का पक्ष का है, तुम इसलिए राम को मरवाना चाहता है जो राम कभी नहीं लौटे, इसलिए तुम उनकी सहायता करने नहीं जा सकते। बहुत गंदी गंदी बातें कही, लक्ष्मण जी ने एक सर्किल खींच दिया, इसके अंदर नहीं रहना, बाहर में मत जाना, मैं नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूं कि राम पर कोई भी संकट नहीं आ सकते, किंतु आप मान नहीं रही हैं और लांछन लगा रही हैं, अब जो होना है सो वही होगा, किंतु मेरी विशेष प्रार्थना है कि इसके बाहर में मत जाना। सीता जी वहां पर अंदर में रही, इतने में कोई एक सन्यासी त्रिदंडी एकदम हमारे जैसा तिलक, गले में कंठी और हम लोगों का जैसा त्रिदंड लेकर के वहां पर उपस्थित हुआ, कमंडलू लेकर के और दंड, लाल कपड़े ऐसे ही। सीता जी ने कहा सचमुच में ये त्रिदंडी सन्यासी है, भक्त है। उसने कहा भिक्षा देही, वो भिक्षा लेकर के भीतर ही भीतर रही, बाहर नहीं आई, बर्तन को बाहर दे दिया, नहीं लिया। मैं बंदी हुई भिक्षा नहीं लेता, यदि भिक्षा देना है तो बाहर आओ, मैं भीतर नहीं, मैं बाहर पार नहीं जा सकती, तो मैं भिक्षा नहीं, किंतु मैं अभी संपात करता हूं तेरा पति मारा जाए और उस पर संकट आए। अरे एकदम डर गई, आराम उसके भीतर आने की चेष्टा की, जब ही खड़ा बंद करके ऊपर में आ रहा, खड़ा लकड़ी है ना, बिजली के तार पर यदि लकड़ी पड़ती है तो कोई गड़बड़ी नहीं होती, किंतु तो भी आग निकल रही है, बस पीछे हट जाता है। अंत में अभिसंपात के डर से सीता जी बाहर आई, उनको पकड़ करके लेकर के चला गया। राम रावण का युद्ध हुआ, सीता के कारण रावण का वंश एकदम सा समाप्त, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती सभी का ध्वंस हुआ। असल में ये सीता जी थी कि कौन थी? रामचंद्र जी ने युद्ध के पहले ही, सीता अपहरण के पहले ही सीता जी को अग्नि को सौंप दिया था दंडकारण्य में। अभी वो स्थान है, जमीन से नीचे है, वहां पर पहाड़ है, पहाड़ के नीचे कंदरा में एक भीतर गुफा में वो स्थान है जहाँ अग्नि को सौंपा था। असल सीता को वहां रख करके नकल सीता में इसे माया सीता बना करके और रावण के युद्ध तक उन्होंने इसी के साथ में लीला की। रामचंद्र जी ने असल सीता को पाने के लिए कहा जा आपको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। सब लोग देख रहे हैं जी रामचंद्र ऐसा कर रहे हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सीता जी वो माया की सीता जी रोने लग गई असल सीता के समान, बोली लक्ष्मण जी से यदि मुझे ये ग्रहण नहीं करते मैं जल मरूंगी, तुम काठ की चिता बनाओ लकड़ी की। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के तरफ में देखा, बड़े गंभीर थे, और जैसे सीता जी तो पवित्र हैं, इनको आप ग्रहण नहीं कर सकते, अभी डरते हैं समाज से। कुछ नहीं कहा, उन्होंने चिता लगाई और जलती हुई चिता में सीता जी गई। यदि राम के अतिरिक्त हमने कभी कभी किसी का स्पर्श नहीं किया है मेरा मन, तो याद बर्फ के समान सुशीतल गए, बस आग एकदम शांत हो गई। उसमें सुंदर लाल पुरुष एक निकला, बोला जी मैं अग्नि देवता हूं, मैं साक्षी देकर के कहता हूं मैं सर्वत्र रहता हूं, ये पति व्रता है, आप इसे ग्रहण कीजिए। इतने सब देवता लोग आए, महाराज दशरथ आए और साक्षी दीप और उनको ग्रहण किया। हुआ क्या, अग्नि में माया सीता चली गई और असल जो सीता थी अग्नि देव ने प्रकट करके राम को समर्पण। इस रहस्य को किसी ने जाना नहीं, वो एक रहस्यमय कथा रह गई। पश्चात में जबकि लौटे, 11,000 वर्ष तक रामचंद्र जी ने राज्य किए। जब 11,000 पूरा होने वाला था, 8-10 वर्ष जब कम था, उसमें सीता जी को एक धोबी के कहने से वनवास दिया। धोबी की पत्नी कहीं शाम को गई थी अपने परिवार वालों के साथ में, कहीं किसी के घर पर आई तो रात हो गई। उस धोबी ने कहा जैसे मैं राम नहीं हूं, क्या समझती है राम जैसा, मैं राम नहीं, अभी घर से निकलो। 1 लात मारा उसको घर से बाहर। रामचंद्र जी का दूत वहां पर ये सब वेश बदल करके ये सब राज्य में घूमते थे, उन्होंने सुना ये ऐसा कहा, एक जगह देखा दूसरी जगह भी कुछ ऐसे ही वार्तालाप चल रहा था, कुछ उंगली उठ रही थी। रामचंद्र जी ने सोचा ये अच्छी बात नहीं, उन्होंने लक्ष्मण जी के हाथ में सीता जी को वनवास दे दिया ना? कब के लिए? आजीवन, जैसे आजीवन कारावास होता है, आजीवन उनको वनवास दे दिया। सीता जी ने उसका प्रतिवाद नहीं किया, उनके गर्भ में 2 बच्चे थे, कोई प्रतिवाद नहीं किया। बस रोती रोती रह गई बेचारी, बच्चों का पालन पोषण किया और उनके बच्चे लौकुश को उन्होंने शिक्षा दी, रामायण पढ़ाया वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जैसे ऋषि थे, बड़े प्रतिभाशाली, शक्ति रखने वाले, इसलिए सीता को रख लिया अपनी बेटी के रूप में। दूसरा कोई शक्तिशाली वैसा ऋषि नहीं होता तो नहीं रख पाता। क्यों? रामचंद्र जी ने जिसको यहां अपने घर से निकाल दिया उसको तुमने रखा, इसलिए रामचंद्र जी जैसा कोई शक्तिशाली पुरुष ही सीता जी की रक्षा कर सकता था, उनको अपने घर में रख सकता था, नहीं तो रामचंद्र जी के कोप का भाजन बनेगा। वाल्मीकि जी कम नहीं थे, उन्हीं राम का भजन किया था, इसलिए उनकी शक्ति भी उनमें थी। आज पुत्री हमारे यहाँ रहो, निश्चिंत रूप में तुम्हारा पालन पोषण मैं करूंगा। सीता जी उनके पुत्री के समान उनके आश्रम में रही। मालूम होता है उस समय आश्रमों में महिलाएं भी रहती थी जो भजन करने वाली, अनुसुईया जी जैसे रहती थी, और सब महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं, बड़ी विद्वान होती थी, वो लोग भी ऐसे आश्रमों में रहा करते। कुछ दिनों के बाद में उनके बच्चे हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और वो रामायण का गान करने के लिए इधर उधर जाते थे। उसी समय रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। वाल्मीकि से उन्होंने, वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा, गुरुजी हमको यज्ञ करना है, तुम नहीं यज्ञ कर सकता। क्यों? तुम आज आठ या नौ वर्ष या अधिक से अधिक 12 वर्ष के बच्चे होंगे। अत्यंत सुरीला सुकंठ, मधुर गायन, छंद के साथ में, स्वर के साथ में, लय के साथ में, वीणा के ऊपर में गा रहे थे, सबका चित्त मुग्ध कर देते थे। सुंदर भी वैसे, सुरीले भी वैसे। रामचंद्र जी उनको बुलवाया हमारी सभा में गान कर, सुंदर से लेकर के थोड़ा सा एक दो सर्ग उन्होंने गाया। रामचंद्र जी के आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे, जितने वहां पर लोग थे मानो वो लीला एक मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गई, सभी लोगों के आंखों में, नेत्रों में जल। जब उनका गायन समाप्त हुआ, रामचंद्र जी ने कहा, इस बेटे का, बच्चे का परिचय तो लो, इसके बाप का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। लक्ष्मण जी गए, बड़े आदर के साथ में, स्नेह के साथ में पूछा, बेटे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कहाँ रहते हो? कहिए, आप इतने शास्त्रज्ञ और धार्मिक होकर के हमसे पूछ रहे हैं, आपका यह प्रश्न अनुचित है। हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हमारे गुरु का नाम पूछे, हमारा परिचय गुरु से है, पिता से अभी कोई परिचय नहीं हमारा, इसलिए उनका नाम पूछे। हमारे गुरु जी का नाम वाल्मीकि जी है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। लौट करके गए, रामचंद्र जी से कहा, रामचंद्र जी ने कौशल्या जी कह रही है राम को, बेटा तुम्हारा यदि बेटा होता ना, ये ठीक तुम्हारी जैसा इसका रूप है, और आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी कहते, बात मैया ठीक कह रही है, ये बेटे तो इन्हीं के लग रहे हैं, ये बड़े अब है और ये बच्चे जो हैं ये छोटे हैं, किंतु दोनों का रूप एक समान श्यामला रंग, एक ही जैसा मुख का कटिंग फेस, बोली भी वैसे मधुर, गुण भी एक समान उनके। हमको तो ऐसा भाव इन्हीं के पुत्र हैं, किंतु प्रमाण नहीं। इसके बाद में रामचंद्र या जैसा भी हो कोई भी हो, इसको सोने के थाल में भर करके असारथी और रत्न दी जाए। और लक्ष्मण जी सोने के थाल में बड़े से रत्नों को भर करके ले आए देने के लिए। उन्होंने कहा जी हमें जी मुझे इसकी क्या जरूरत, हम ऋषियों के आश्रम में रहते फल मूल खाते हैं, पहनने के लिए हमें मिल जाता है बलकल वस्त्र, माने केले के छिलके का वो बनता है ना, मोटा कपड़ा, बस यही तन ढकने के लिए मिल जाता है। पानी पीने के लिए अंजलि है, गंगा से पानी लेकर के पी लेते हैं, कोई बर्तन की भी आवश्यकता है, इसलिए हमें इन सब से क्या प्रयोजन है, ये तो आप राजाओं के लिए जरूरत है, आप लोग रखिए। नहीं लिया। बड़े प्रभावित लोग हुए। उत्सुकता जी कौन है, एक व्यक्ति बतला सकता है, वो कौन, वाल्मीकि जी बतला सकते हैं, उस समय सभा में नहीं थे, दूत भेजा गया। और इधर ये बच्चे लौट करके जबकि अपने आश्रम में गए तो आज विलंब हो गया था। मैया ने कहा जी बेटे आज बड़ी देर लगाई तुम, बहुत देर से प्रतीक्षा कर। बच्चे उस मैया की गोद में दोनों बैठ गए, एक बाएं एक दाहिने, और मैया ने दोनों को अपने अंक में भर लिया, चुंबन करने लगी, स्नेह करने लगी। बेटे बेटे कैसे देर हो गई, आज हम लोग एक सभा में गए और आप संपत्तिशाली प्रभावशाली राजा, उसका नाम राम, उसकी सभा में बड़े स्नेह से बुलाया, और हमने जब गान करना आरंभ किया तो सभी लोग रोने लगे। मैया एक बड़ी विचित्र बात देखा, क्या बेटा, उस सभा में देखा कोई यज्ञस्थली थी और यज्ञस्थली में एक सोने की मूर्ति थी, सोने की मूर्ति में अब तुमने कोई अंतर ही नहीं देखता, ठीक मानो तुम ही वहां पर बैठी है, वो बोलती नहीं थी और तुम बोल रहे, बस इतना ही अंतर। मैं देख करके हैरान हुई, ये मेरी मैया यहाँ पर आकर के बैठ गई या क्या हुआ। ये सुन करके सीता जी एकदम रोने लगी। उस समय उन्होंने भीतर भीतर अंतर में सोचा, राजा ने रानी का त्याग किया है, राम ने सीता का प्रत्याग नहीं किया है, जब मेरी मूर्ति को वहां पर रखे हैं तो मेरे प्रति उनका स्नेह है, नहीं तो रख नहीं सकते, दूसरे किसी पत्नी को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और हमारी मूर्ति के साथ रख करके यज्ञ किया है, एकदम आंसू भर गए। ये उन्होंने कहा जी मैया तू रो क्यों रही, अब कैसे बतलाएं जी मैया किस लिए रो रही, एकदम चुप हो गई। और इधर में वाल्मीकि गए राम के यहाँ, उन्होंने कहा जी सीता जरूर कहीं घर में है, आपके पास में है तो हाँ है, उसको कहीं यहाँ पर ला सकते हैं, तो यदि आप आदेश करेंगे तो जरूर लाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप उनको लाएं। और भरी सभा में ये बतलाए मैं पतिव्रता, ठीक। दूसरे दिन सीता जी को बुलाया गया, लोकुश तो उनके साथ में आए, सारी सभा एकदम इन ड्रॉप साइलेंट, अरे ये तो सीता जी है। कौशल्या जी उठी, कह कही उठी, सब लोग उनका अभिवादन करने के लिए, राम ने इशारा कर दिया अभी चुपचाप बैठे रहो, देखो कोई अपने आसन से हिला नहीं। राम उठ करके सभा में खड़े हो गए, बोले आप पधारिए, आप निष्कलंक है मैं जानता हूं, किंतु समाज ऐसा नहीं है, इसलिए आप दो एक प्रमाण ऐसा दीजिए कि आप पवित्र हैं, मैं आपको ग्रहण कर सकूं। तो आपको महाराज दशरथ के बातों पर विश्वास नहीं, अग्नि के बातों पर विश्वास नहीं, दिशाओं के बातों पर विश्वास नहीं, ऋषि ब्रह्मर्षि के बातों पर विश्वास नहीं, और कुछ प्रमाण चाहिए तो दे सके तो अच्छा है। अच्छा तो मैं प्रमाण देती हूँ, हे पृथ्वी देवी आप मेरी मैया हैं। समय में उसको प्रमाण देना है, जबकि मैंने तन मन वचन से किसी भी दूसरे व्यक्ति को राम के अतिरिक्त मैंने नहीं स्पर्श किया है। विवश अवस्था में किसी व्यक्ति ने हमारा शरीर स्पर्श कर दिया वो बात अलग रहे, क्योंकि जान बूझ करके नहीं किया है, मन ने स्पर्श नहीं किया है, मैंने इसका विरोध किया। कहे धात्री देवी मेरी मैया तुम जल्दी से प्रकट करके अपनी गोदी में ले गया। तीन बार ऐसा कहा, साथ साथ में पृथ्वी फट गई, सुंदर सोने का सिंहासन आया, उसमें सीता जी को वो पृथ्वी देवी आई, वो भी एक लक्ष्मी जी है, और सीता जी को अपनी गोदी में ले लिया और एक सेकंड का में पटक छिप हो गया वो पृथ्वी। राम के कलम ला करके हाहाकार कर उठे, सभा हाहाकार कर उठी। राम ने कहा जैसे फल से पृथ्वी तो मेरी सास है, इसलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूं, तो जल्दी से मेरी पत्नी को दे, नहीं तो तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा अपने बाणों से, धूल में मिला दूंगा। वाल्मीकि ने कहा वृथा रोष मत कीजिए, प्रीति श्री वाल्मीकि रामायणम ये हो रहा है। अब ये रामायण की समाप्ति है, सीता जी गई बैकुंठ में अयोध्या लोक में, अब आपको भी चलना है, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए, आप लौकुस को राज्य दे करके, अपने भाइयों के बेटों को राज्य दे करके आप सभी लोग पधारिए। रामचंद्र के कहने से शांत हो गए, अयोध्या लौट गए और जितने पूर्ववासी से सब लोगों को लेकर के सरजू के यहाँ पास गए, वहां पर गुप्तार घाट नाम का एक घाट है, बस वहीं जाकर के गंगा सरजू ने डुबकी लगाई और सभी लोग चतुर्भुज होकर के उनके साथ में चले। तीसरी सीता चरित्रम, ये सीता जी का चरित्र है, आज इनका ये जन्म हुआ। दूसरी बात, आज जहनवा देवी जी का जन्म तिथि है। जहनवा देवी कौन है? नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, जैसे राम की शक्ति सीता जी हैं, कृष्ण की शक्ति राधा जी हैं, बलदेव जी की शक्ति रेवती जी हैं, ऐसे बलदेव प्रभु जी हैं नित्यानंद, और ये रवती जी ही जहनवा देवी। ये जहनवा देवी बंगाल में एक कालना है स्थान गंगा के तट पर, कालना है इधर पूर्व तरफ में और पश्चिम तरफ में शांतिपुर है, अद्वैताचार्य जी का घर है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहीं पर दो भाई रहते थे महाप्रभु के समसामयिक, गौरीदास पंडित जी और सूर्यदास सरखेल, ये दोनों भाई थे। गौरीदास जी परम भक्त थे और सूर्यदास सरखेल उनके छोटे भैया थे, भक्त थे किंतु कहीं मुसलमानों के कहीं राज्यसभा में अकाउंटिंग का कार्य करते थे, लिखना अकाउंट रखना, ये अकाउंट रखते हैं, उनका नाम होता है सरखेल। पूरी में भी बस आते वो कबाब, उनके भी लेखक अकाउंट सब समय रहता है, तो ये अकाउंट रखते थे, इसलिए उनका नाम हो गया सरखेल। किंतु थे बड़े भक्त, दो कन्याएं थी ये माँ और वसुधा, जानमा जी बड़ी थी और वसुधा जी छोटी थी, कि वसुधा जी बड़ी थी याद नहीं। फिर जानमा के गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ, वसुधा जी जो छोटी थी उनके गर्भ से एक बच्चा का नाम था वीरभद्र और एक लड़की, लड़की का नाम मुझे याद नहीं। तो ये जहनवा जी अपने जब विवाह नहीं हुआ था उस समय अपने पिता के निकट अधिक न रख करके वो रहते थे अपने जेठा के यहाँ, जेठा कहते हैं क्या कहते हैं, ताऊ जी, ताऊ जी के पास में रहती थी। ताऊ जी ऐसे भक्त थे गौरीदास पंडित जी, गंगा के किनारे घर है, कुटी है, विवाह शादी नहीं की, छोटे भाई ने किया, परम भक्त हैं। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी को ऐसा आकर्षण किया कि महाप्रभु उनसे मिलने के लिए एक बार नित्यानंद प्रभु जी अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में आए और वहां से गंगा पार करके कालना में इनसे भेंट करने आए। इन्होंने बड़ा आदर किया, एक दिन रहे, दूसरे दिन जब जाने के लिए तैयार हुए
अरे प्रभु आज एक दिन और रह जाइए, और अपने हाथों से सुंदर रसोई, साग दाल अन्न और कच्ची रसोई जो होती है सुंदर से सुंदर बना दे। इस महाप्रभु जी को साग बंद था, वो भी बने ले ये पौधों का। एक दिन रहे, दो दिन फिर जाने के लिए तैयार, प्रभु एक दिन और ठहर जाइए। ऐसे करते 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 उनको 15-20 दिन उनको रख लिया, जाने ही नहीं दे। तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो मुझे जरूर जाना चाहिए, प्रभु आपके बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो ठीक है, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा, अपनी प्रतिमूर्ति वहां से नवद्वीप जाकर के भेज दूंगा। तो नवद्वीप में गए और जिस नीम के पेड़ के नीचे जिनका जन्म हुआ था उसी पेड़ के नीम से दो मूर्तियां बनी लकड़ी की, और उन लकड़ी की मूर्तियों को नीम के मूर्तियों को भेज दिया गया। वहां जाकर के अब गौरीदास जी बहुत ही सुंदर देकर के बड़े प्रभावित हुए और उनकी पूजा करने लगे। उसे कभी बातचीत भी करते, कभी नमक कम हो जाता तो कहते जरा नमक ले आना, तो कोई चीज खिलाता तो वो मूर्ति उनसे मांगता और बड़े प्यार से रखते। एक दिन थी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी उनके घर में आए, अब दो ये और दो वो। वहां पर उनको लिए भोग अर्पित होता है, वहां पर उनका मन वेद जाता है, ये लोग भी प्रसाद पाते वो भी। एक दो दिन हो गए, गौर नित्यानंद ने कहा जैसे अब तो बहुत दिन हो गए भाई, 2-3 दिन हो गया, अब हम लोग चलेंगे नवद्वीप में मायापुर, प्रभु एक दिन और ठहर जाइए। अच्छा फिर वैसा ही करने लगा, भाई एक बात करो, उन दोनों को या तो रखो या दोनों हमको रखो। ये अच्छी बात है, ठीक है। तो जब ये लोग चल ले चलते नहीं, आप प्रभु रहिए ये लोग जाए, जब रह जाते तो वो लोग चलने लगते, कहे प्रभु आप रहिए ये लोग जाए। इस दोनों को रोकने की चेष्टा कर, और ऐसी विचित्र कि जब ये दोनों रहते नित्यानंद प्रभु गौरचंद्र तो उनकी मूर्तियां वहां से चली जाती, और जब ये लोग रहते तब उस मंदिर में जाकर के मूर्ति बन जाते। फिर बातचीत पैसा नहीं, एकदम ठीक अभी कल मूर्ति बन जाए, फिर उनके लिए रोने लगते जी आप लोग आइए, फिर आते तो कभी वो आ जाते कभी ये, छोड़ते नहीं। इस तरह से गौरीदास पंडित की ये भक्ति देखिए कितने भक्तिमान। अब उनकी सेवा करने वाली कभी कभी गौरीदास जी उनकी सेवा में नियुक्त करते थे। बचपन से एक ऐसी शिक्षा हुई, ये जब बड़ी हो गई तो नित्यानंद प्रभु में पधारे और इन लोगों ने निवेदन किया आप इससे शादी कीजिए। इनकी कौन सी लीला, क्योंकि वही रेवती जी ये बनी, और एक थी रेवती और एक बारुणी, एक बारुणी एक रेवती, दो बंदे पत्नियां थी, वो दोनों वसुधा और जाह्नवी थे। अनंग मंजरी तो कृष्ण के लीला थी, जाह्नवी जी हैं अनंग मंजरी। तो इस तरह से उनकी शादी थी अनंत प्रभु से दोनों की। होने के बाद में उनकी गई, कुछ दिन रहने के बाद में वसुधा जी के पुत्र हुआ। फिर वो जब बड़ा हुआ, कुछ बड़े हो गए तो नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी अप्रकट हुए, फिर नित्यानंद हो गए, और सब लोग धीरे धीरे उनके लीला के जितने परिकर थे वो सब लोग चले गए। अब जन्मा जी रह गई, वसुधा जी रह गई, इनका पुत्र ही रह गया। पुत्र करीब करीब 12-13-14 वर्ष का हो गया, 15-16 वर्ष का हो गया, किंतु अभी तक किसी से दीक्षा नहीं ली। नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, उनके पुत्र ये हैं। लोगों ने परामर्श दिया कि तुम किसी से हरिनाम दीक्षा जरूर लो। जब महाप्रभु जी ने दीक्षा हरिनाम लिया है, नित्यानंद प्रभु जी ने भी लिया है, तुमको जरूर लेना चाहिए। किंतु वो कहते थे मैं नित्यानंद प्रभु जी का पुत्र हूँ, अब हमसे बड़ा कौन होगा, हम नहीं लेंगे। हम लेंगे उसी से जो नित्यानंद प्रभु के बराबरी का कोई भक्त हो, तब मैं लूंगा, ऐसा कर्तव्य हो, ऐसा प्रभावशाली हो। तो ऐसा कोई प्रभावशाली नहीं दिखता था। लोगों ने कहा जैसे तुम एक बात करो, अपनी जो मैया है ये जाह्नवी देवी, उनसे तुम दीक्षा मंत्र ले लो। मैं महिला से नहीं लूंगा, कोई भी महिला कैसी भी हो, ठीक है। तुम उनको महिला समझता है, देवी नहीं समझता। अरे वो अनंग मंजरी की अवतार हैं, वो रेवती जी की अवतार हैं, तुम नहीं समझता। भाई जो कुछ भी हो मैं महिला से नहीं लूंगा, हमारी मैया है। एक दिन की बात है कि एक दिन वो अंदर महल में बाथरूम में गई। महिलाएं ऐसे होती हैं बंगाल की कि अपने कप छोड़कर कुछ साफ ही इच्छा होता है, गमछा ऊपर एक गमछा दो गमछे बाहर कर, हम लोग भी दो गमछों का ही व्यवहार करते हैं, तो एक गमछा नीचे वो उन्होंने ले ली। बाई चांस वो एक दूसरा गमछा मिला नहीं, उसी से अपना नृत्य किया और होने के बाद में वो कुएं पर आई, कुएं से पानी खींच रही है करने के लिए, और ऊपर वाला कपड़ा नहीं है, नीचे वाला तो है। और इतने में 16 वर्ष का वो लड़का हो गया है वीरभद्र, उसको कोई एक खास जरूरत क्या से जानवा देवी से, वो अंदर महल में आ गया कुएं के पास में। अरे मैया मैया तू कहां है, मैं कहते हुए जब कुएं के पास आया तो लड़का तो है बड़ा है, उसे भी लज्जा है, उनके बस्तक्षल इत्यादि खाली हैं, ऊपर से केवल नीचे से ये पहनी है, नीचे वाला ऊपर वाला कपड़ा है नहीं, इसलिए बड़ी लज्जित हुई। लज्जित है अब क्या करें, आधा बाल्टी आधी दूर तक आई है कुएं में और दोनों हाथ से अभी खींच रही है, एक दो हाथ और निकले, चार हाथ हो गए, दो हाथों से इधर में ढक लिया और दो हाथों से खींचने लगी। देखते ही एकदम दंडवत प्रणाम हो गए दोबारी, ये तो सचमुच में ये तो स्त्री महिला तो है नहीं, ये तो चतुर्भुज है, ये तो ये सचमुच में जो लोग कहते हैं ये वारुणी देवी जी हैं, रेवती जी हैं, रेवती जी की भी ऐसी शक्ति थी। बलदेव जी कभी कभी द्वारका में चतुर्भुज भी हो सकते हैं, उनकी पत्नी भी हो सकती है, ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। सलाम किया फिर निकल कल चले आए। फिर जब उन्होंने स्नान स्नान किया तो उनके पास में आकर के बोले जी आज ही आपको हमको दीक्षा देनी पड़ेगी। तब उन्होंने अनुग्रह करके उनको दीक्षा हरिनाम और दीक्षा दिया। ये जाह्नवा जी का चरित्र। उस समय वैष्णव समाज में जब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी नहीं रहे तब उस समय में बंगाल और ब्रज और उधर में जगन्नाथपुरी, तीन जगह तो हम वैष्णव के क्षेत्र हम लोगों के हैं, गौड़ीय वैष्णव के, सब लोग इनको अपना श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं, वैष्णव जगत की सम्राट थी। उनके बिना आदेश का कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था उस समय, जिसको जो कहती थी वो शिष्य के रूप में इनके आदेश का पालन करता था। यहां तक कि एक व्यक्ति था बहुत सुंदर पाठक और अपने को बहुत भक्त समझता था, बहुत त्यागी वैरागी था, उसका नाम था रूप कविराज। एक दिन वो प्रवचन कर रहा था और ये हाथ में माला लेकर के हरे कृष्ण कर रही है, आंख बंद करके सुन रही है। उसने कहा कि यदि भागवत की कथा हो उस समय माला करना और हरिनाम करना आंख बंद करके ये अपराध, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं समझा कि हमसे लाखों गुण ऊपर हैं, ईश्वरी हैं, नहीं समझा, उनको शासन करने की चेष्टा की। और भी दो ऐसी बातें हुई जो रूप गोस्वामी के सिद्धांत को उलाद करके दूसरी तरफ में देखना चाहा, उनके सिद्धांत ठीक नहीं, हमारा सिद्धांत ठीक है। उन्होंने आदेश दिया उसकी और बातों को देख करके, ये वैष्णव समाज से इसका बहिष्कार होना चाहिए, मैं घोषणा करती हूँ कि ये वैष्णव समाज में नहीं, ये पति बाढ़ी है, पति बाढ़ी मैंने धर्मराज ने बहुत अपने को बड़ा समझता है किंतु है नीचा। बस सुनते ही वैष्णव समाज से उसका बहिष्कार कर दिया गया, उसको अब कोई पूछता नहीं था, ऐसे प्रतिभाशाली थी। जिस समय में नरोत्तम ठाकुर जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके कीर्तन पदावलियां हैं, नरोत्तम ठाकुर जी जब वृंदावन से लौट करके घर गए तो उन्होंने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कराई,
उसमें श्रीनिवास आचार्य आए और इनको भी बुलाया गया। ब्रज से, पुरी धाम से और मथुर गौर मंडल के जितने भी भक्त लोग थे सभी लोग वहां पर आए, कनिष्ठ मध्यम उत्तम सभी लोग आए। उस सभा में श्रीनिवास जी जब भागवत का पाठ कर रहे हैं तो जिस समय में राष्ट्रस्थली का वर्णन करने लगे उस समय राष्ट्र वहां पर सब अपने आप प्रकट हो गया, जितने श्रोता थे उन लोगों ने देखा। जब भागवत समाप्त हो गया तो देखा जी कुछ नहीं। इसके बाद नरोत्तम ठाकुर ने कीर्तन आरंभ किया, उनकी पदावलियों में बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, राधा कृष्ण प्राण मोद जुगल किशोर और राष्ट्र के भी पद हैं। जबकि उन्होंने उनका अपना सुर ताल लय मान शास्त्रीय संगीत करते थे। जब मृदंग बजने लगा और जब वो कीर्तन करने लगे, नित्य करने लगे, एकदम चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त परिकरों के साथ में प्रकट हो गए। जो अप्रकट हो गए थे तब तक महाप्रभु के करीब करीब 250 वर्ष बाद में वहां पर प्रकट हो गए, कीर्तन विराट होने लगा। थोड़ी देर में राधा कृष्ण सभी वहां पर एकदम उपस्थित हो गए बदल करके, और राष्ट्र जैसा स्थिति हो गई। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जब कीर्तन बंद कर दिया तो देखा जैसे कुछ नहीं। ऐसे ऐसे ये लोग थे गुणी, ऐसे ऐसे परम भक्त थे। उस समय ये गई, इनके चरण धोए अपने आप नरोत्तम ठाकुर जी ने और पान किया, सब भक्तों को दिया। तो बतलाइए जैसे ये कैसे होंगी, ये कितनी प्रभावशाली ये थी। महिला होने से उसको ये कोई इम्पोर्टेंस इसका नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारे संप्रदाय में इसका भी विधान है कि उनको उचित आदर दिया जाए, उसके भक्ति के तारतम्य से सबको जहां तक हो सके। तो उस समय में विग्रह जो प्रतिष्ठा हुई उसका सभापतित्व या अभिनायकत्व इनका था, सब लोग इनकी पूजा करके इनका आदर करके तब विग्रह प्रतिष्ठा या पाठ प्रवचन सब करते थे। उस समय जो विग्रह प्रतिष्ठा हुई 6 ठाकुर थे, राधा कृष्ण की, राजबिहारी, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा मदन, गौरांग, गौर नित्यानंद, बल्लभी कांत, गोपीकांत, इस तरह से 6 विग्रहों की स्थापना। बहुत धूमधाम से मचा, भारतवर्ष का एक प्रधान क्षेत्र बना गया। तब से मूर्ति जब स्थापित हुई तब एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न, ठाकुर जी की कोई मूर्ति है या नहीं। ठाकुर जी की मूर्ति माननी चाहिए या नहीं, उसे क्या होता है, आइडोलेट्री जिसको कहते हैं, आइडल पूजा, भूत पूजा, मुसलमान लोग कहते हैं भूत पूजा, और कोई कहते हैं मूर्ति पूजा, बेकार की चीज है जिसको मोहम्मद गोरी ने तोड़ दिया, जिसके सब लोग पूजा कर उसको, ये भगवान उस पत्थर को मानते हैं। भारतवर्ष के सनातनी हिंदू के अतिरिक्त भगवान की मूर्ति को लोग नहीं मानते, विशेष करके 2 जातियां नहीं मानती, ईसाई धर्म वाले और दूसरा मुसलमान लोग नहीं मानते। आजकल इन्हीं की संख्या अधिक है, हम लोग अभी जगत में, विश्व में हम लोग अल्पसंख्यक वाले हिंदू रह गए, और इसमें से भी कटता जा रहा, बौद्ध निकल रहे हैं, नीचे जाति वाले शेड्यूल कास्ट वाले धीरे धीरे निकल रहे हैं, राजनीतिक आर्य वाले ये लोग निकल रहे हैं, यहाँ तक कि बंगाल में जो रामकृष्ण मिशन वाले हैं वो लोग भी अपने को अब हिंदू नहीं कहना चाहते हैं, उनको कुछ लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए वो लोग भी चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यक बनाए तो हमको कुछ सुविधाएं मिले। अब ये धीरे धीरे इन लोगों में भी विभाग अब सब राजनीतिक लीडर लोग करा रहे हैं। तो उन लोगों का कहना यह है भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आकार नहीं उनका है, किंतु हमारे सनातन धर्म में हम हिंदुओं के लिए ये मूर्ति पूजा एक रीढ़ के समान है, जैसे शरीर में ये रीढ़ होती है,
प्राचीन काल से अब तक चलती आ रही है, अभी तक लोग कुछ कर नहीं सके, संख्या कुछ कमी है किंतु मानने वाले की कमी नहीं हो रही, अभी भी वैसे ही चल रही है। इसलिए बहुत से लोग बौखला जाते हैं। इस पर हम साधारण रूप में एक शास्त्रीय विचार कर रहे हैं और लौकिक युक्तियों का भी विचार कर रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है जिसकी मूर्ति मानी जाती है, यदि भगवान की मूर्ति मान ली जाए तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते, समझ रहे हैं। जो सर्वव्यापी है उसका कोई आकार नहीं हो सकता, वो एक ही जगह में रहेगा, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। इसलिए यदि भगवान का आकार माना जाता है तो उसको सर्वव्यापी नहीं माना जा सकता, किंतु शास्त्रों में और साधारण रूप में ये बात प्रचलित है और सत्य है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो ये मेल नहीं खाता है, परस्पर सिद्धांत विरोधी है। दूसरी बात, जिस चीज का आकार होता है उसको सुख और दुख सहना पड़ता है और उसकी मृत्यु भी होती है, जन्म भी होना है, जितने भी आकार है। तो यदि भगवान का आकार माना जाता है तो उनकी जन्म मृत्यु मानना पड़ेगा और उनको सुख दुख होता है, दोनों, ये दोनों मानना पड़ेगा। किंतु ब्रह्म जो है, अल्लाह खुदा है, भगवान है, इनको यदि माना जाता है आकार है तो उनका भी जन्म और मृत्यु मानना पड़ेगा, किंतु उनका जन्म मृत्यु नहीं माना जाता, उनको सुख दुख से वो अतीत है, अवांग मनसो गोचर है, इसलिए उनका रूप नहीं होना चाहिए। ये उनकी प्रधान दो युक्तियां हैं। अब हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में विचार करें, एक घंटा शायद हो गया है, मैं चाहता था ये विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या करूं, अब आज संभव नहीं, मैं संक्षेप में दो एक बातें बतला रहा हूं। पहली बात तो कुरान में एक एक वाक्य है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। क्या मतलब? गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, जैसी उनकी मूर्ति है, इमेज है, उसी के समान ही मनुष्य को बनाया। यदि यह बात ठीक है तो अल्लाह उनका, गॉड का भी रूप है और ऐसा ही है। पहली बात तो ये, ईसाई लोगों को या तो उस वाक्य को निकाल करके फेंक देना चाहिए, अन्य तो कहा जाएगा कि बाइबल में इनका विश्वास नहीं है। दूसरी बात, मुसलमानों का कुरान ग्रंथ है, उसमें लिखा है इन्ना अल्लाह खलाका मैन सूरत ही, उच्चारण तो मेरा ठीक से नहीं हो रहा है, ये लोग फारसी जानने वाले हैं, किंतु तभी ये है किसी न किसी रूप में। तो ये जो खुदा अल्लाह है, उनकी जो जस्मानी जो शरीर है, उनका सूरत है, अपने सूरत के अनुसार में इस सब जगत की सृष्टि की, तो उनकी सूरत है। सूरत माने क्या? आकार है, रूप है। और हमारे हिंदू शास्त्रों में, वेदों में लिखा है सत एव सम्य इदम अग्रासी, सत एव सम्य, मैं सत हूं, हमारा आकार है, हमारा रूप है, एको बहु श्याम, मैं एक होकर के बहुत होता हूं, इदम अग्र आशित, मैं पहले भी था और पीछे से भी मैं प्रकट होता हूं, और अपने समान ही ये सबको बनाया है। स अक्षत, उन्होंने इच्छा की क्या जगत हो, ऐसे बाइबल में भी एक शब्द है, उन्होंने इच्छा की ये जगत हो तो जगत हुआ। हमारे शास्त्र में भी एक बात, हमारे शास्त्रों से ही ये सब है। 1900 कितना आज है, 1995 ना, 1995 बस हुआ ईशा का, उसके पहले तो ये था नहीं, और हमारे वेद तो बहुत पहले के हैं, इसलिए हमारे वेदों से लिए गए। और कुरान शरीफ 1400 कितना दिन हुआ है, वो भी हमारे शास्त्रों से ही कुछ लिए गए हैं, उनका कुछ अपभ्रंश ये सब चीजें हैं। तो इसमें भी वैसा लिखा गया, गॉड मैंने क्या, जी ओ डी, जनरेटर, किस चीज का जनरेटर, जगत का, ऑब्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर,
पालन करने वाला, पोषण करने वाला और उसका भरण पोषण करने वाला। किसका भरण पोषण करें? यदि अपने रूप के समान बनाया जिसमें सृष्टि जो करते हैं वो कारण माना जाता है और इस जगत को कार्य माना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कॉज एंड एक्शन थ्योरी। और एक है सब कारणवाद, इसी का अनुवाद है हिंदी में सब कारणवाद। ये दार्शनिक शब्द है, इस पर जब विचार करते हैं कारण में जो चीज है वही कार्य में दिखाई पड़ता है, अन्यथा जो कारण में नहीं है वो कार्य में नहीं हो सकता। आम के बीज में जो है वही अंकुरित होकर के उसी से आम ही का फल होगा, वृक्ष होगा, उसे बबुल नहीं हो सकता है, इमली नहीं हो सकती ना? सरसों का पौधा उसे आम नहीं हो जाएगा ना? जो चीज जैसा है जिसमें उसमें जो पोटेंशियल है वही प्रकट होकर बसे। यदि इस ब्रह्म में जगत के जो क्रिएटर हैं उनमें कोई रूप ही नहीं है तो ये रूप वाले विभिन्न रूपों को देखते हैं, ये कहां से आया? आम के बीज में आम का पेड़ है कि नहीं है? जरूर है, हम देखते हैं। इसलिए ब्रह्म में जरूर जितने भी रूप हैं वो रूप हैं। और फिर शास्त्रों में निराकार किस लिए कहा गया? मैं संक्षेप में दो एक बात बतलाऊं, पीछे बतलाऊंगा, इसकी व्याख्या करूंगा किसी दिन। तो बतला रहे हैं निराकार शब्द है, निर्गुण शब्द है ना? निर्गुण, निराकार और
निर्विशेष,
निःशक्ति, निरुपाधि इत्यादि जो शब्द हैं, इसमें गुण प्रधान मौलिक शब्द है। गुण रूप, और रूप से अरूप बना है, अरूप से रूप नहीं बना, रूप में अ लगाओ तो फिर से ये हो गया अरूप। ये एक बीमारी है, किसी को नाक से पानी आ रहा है, शरीर गर्म है, छींकें हो रही हैं, क्या समझो? जुखाम। ये जुखाम के ये लक्षण हैं। तो रूप है, किसी कारण से उसमें अरूप लगाया तो पीछे से अरूप बना, ये बीमारी है। किसके लिए? जो नहीं देखते हैं उस रूप को उनके लिए अरूप कहा गया। क्यों नहीं देख सकते? चिन्मय वस्तु है, हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती। अभी चीज को समझने के लिए ऐसे समझिए, पानी है, पानी को किसी से पूछिए जी इसका रूप क्या है, साइंटिस्ट क्या कहेगा? वो कहेगा जब देखेगा जैसे जिस चीज में रखते वैसा ही बन जाता है, दिखाई तो पड़ता है ना, तो जिसका रूप ही नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगा? इसका कॉलर क्या है, जैसा ही रंग डाल दो वैसा ही हो जाए, इसलिए साइंटिस्टों ने उसको कहा जिस कॉलरलेस, जिस रूप में उसको रखो वैसा ही हो जाएगा, इसलिए शेपलेस है। तो शेप ही नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं, कोई स्वाद नहीं है। पानी में जरूर अपना स्वाद है, तो अभी कोई चीज मिला दिया जाता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये नमकीन पानी है, ये मीठा पानी है, ये ऐसा पानी है ऐसा, किंतु अपना उसका कोई रूप है, गुण है, टेस्ट है, बट यू कैन नॉट डिफाइन, लाखों शेप धारण कर सकता है, यू कैन नॉट डिफाइन दैट व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर, व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर,
व्हाट इज द टेस्ट ऑफ
वाटर। इसलिए उसको निराकार इत्यादि कहते हैं। देख रहे हो? नहीं कर सकते। जब एक पानी के भी तुम रूप गुण इत्यादि को नहीं देख सकते तो पानी को भी बनाने वाला उससे में ये सुख है उसके रूप को तुम क्या डिफाइन कर सकते हो? इसलिए उसको निराकार कर दिया। क्यों? अचिंता खलु भावा न तांस्तार के न जो जये, जो प्रकृति से अतीत है, अवांग मनसो गोचर है, तुम अपनी बुद्धि से कैसे उसको नाप सकते हो, उस पर कैसे विचार किया? इसलिए शास्त्रकारों ने इसलिए कहा ये प्राकृत बुद्धि से नहीं पकड़ में आ गया, इसलिए वो निराकार है, वो निर्गुण है। भगवान में यदि गुण नहीं है तो ऐसे भगवान से हमें जरूरत क्या है, जो कि जिसमें दया भी नहीं है, जिसमें प्रीति नहीं है, उस भगवान को मान करके क्या होगा? तो उसे तो पत्थर अच्छा है, पत्थर जैसा निष्ठुर है वैसे निष्ठुर है, आकाश जैसे निराकार हो गए तो आकाश को कोई पूजा करता है? इसलिए मुसलमान लोग भी, हिंदू लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी या दूसरे बौद्ध लोग भी
यदि मूर्ति नहीं मानते हैं तो मस्जिद किस लिए खड़ा करते हैं, जरूरत क्या के खड़ा उसमें किस लिए? और ये बाइबल वाले क्या करते हैं, चर्च है ना, चर्च की जरूरत क्या है? खुले आकाश में निराकार का ध्यान भी तो नहीं होगा, उस तरह की कोई वस्तु नहीं हो सकती है। इसलिए ये सब कोरी कल्पनाएं हैं, उनको किसी न किसी रूप से उनको मानना पड़ता है, किसी न किसी रूप से। तो आज यहीं पर समाप्त करूं, अब जब कब जब फिर आएंगे तो विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या करके और भी उदाहरण और भी सब युक्तियां सुंदर सुंदर, जिसे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि भगवान का रूप है, जीवात्मा का रूप है, ये जो रूप है ये रूप नहीं है, अभी जो देख रहे हैं इसकी कोई स्थिति नहीं है, नित्यता नहीं है, ये तो मिट्टी है। इसलिए हम दूसरे दिन इसको बतलाएंगे शास्त्रों से प्रमाण लेकर के, विचार लेकर। आज ही